हरे कृष्णा। पिछले कई रविवारों से राज ऋषियों की कथा हम सब सुनते आए हैं। महाराज प्रियव्रत, महाराज ऋषभदेव, महाराज पृथु, अब और सुनना चाहते हैं? महाराज ध्रुव की कथा सुनना चाहते हैं? महाराज ध्रुव भी ऐसे ही एक राज ऋषि थे, लेकिन किस तरह से वो राज ऋषि बने और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये भी एक सुंदर कथा है जो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध में आता है। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, उत्तम और ध्रुव। उत्तम की मां का नाम था सुरुचि और ध्रुव के माता का नाम था सुनीति। अब राजा उत्तानपाद महारानी सुरुचि से अधिक लगाव रखते थे, अधिक प्रेम करते थे, और इसलिए उनको उत्तम के प्रति अधिक प्रेम दिखाना पड़ता था। एक बार ऐसे हुआ कि राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे और उनकी गोदी में उत्तम बैठा हुआ था। उस समय ध्रुव, जो कि केवल 5 वर्ष के थे, उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भी जाकर मेरे पिता की गोदी में बैठना चाहिए। कौन ऐसे बच्चा है जो ऐसा नहीं चाहेगा? और जब उत्तम के पास बैठने के लिए ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में चढ़ने के लिए गए, उस समय महारानी सुरुचि वहां पर पास में आई और जोर से ध्रुव को डांटने लगी और कहने लगे कि खबरदार, वहां पर महाराज की गोदी में नहीं बैठना। उस गोदी में बैठने का अधिकार, अर्थात राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उस बच्चे का हो सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुम्हें वहां पर बैठना है तो सबसे पहले तुम्हें मेरे गोद से जन्म लेना होगा। तो ध्रुव महाराज को जब ऐसे अपमानित किया गया और अपने पिता की गोदी से नीचे हटाया गया तो उनको बहुत बुरा लगा। थे तो केवल 5 साल के बालक, परंतु फिर भी उनके नसों में क्षत्रिय का खून बह रहा था और क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक खराब होता है, असहनीय हो जाता है। तो ध्रुव महाराज वहां से तुरंत रोते रोते चले गए और अपनी मां के पास गए। उधर महारानी सुनीति को राजमहल के सेवकों ने पहले ही खबर पहुंचा दी थी कि वहां पर क्या हो चुका है। जब ध्रुव महाराज वहां पहुंचे तो सुनीति महारानी ने ध्रुव महाराज को शांत करने का बहुत प्रयास किया और ध्रुव महाराज को समझाने लगी कि देखो ध्रुव, तुम्हें अपने किस्मत से संतुष्ट रहने के लिए सोचना चाहिए। जो भी भगवान की दया से आता है या जो परिस्थिति में हम रहते हैं, हमें जो जिसमें भगवान डालते हैं उसी परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वैसे ये सच्ची बात है कि तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद महारानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं और इसलिए उनको उत्तम के प्रति भी अधिक प्रेम दिखाना पड़ता है। अब मैं तो इतनी प्रिय रानी नहीं हूं और तुम तो मेरे पुत्र हो, तो ये तो आगे चल के भी परिस्थिति बने रहने वाली है, इसलिए ये समस्या का तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जब ध्रुव महाराज और रोने लगे, शांत नहीं हुए। महारानी सुनीति बहुत लंबे समय तक सोच रही थी कि क्या किया जाए। अंततः उन्होंने ध्रुव से कह दिया कि इसके लिए एक ही मार्ग है, और वो है कि तुम भगवान के पास जाओ, भगवान ही तुम्हारे समस्या का समाधान कर पाएंगे, और कोई नहीं कर पाएगा इसे। तो ध्रुव महाराज ने पूछा कि भगवान कहां प्राप्त होते हैं। उस समय सुनीति महारानी ने कहा, हमने सुना है कि भगवान जंगल में मिलते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहां पर जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, और तुम भी वहां जाना। तो देखिए, सुनीति देवी का हृदय कितना बड़ा था कि अपने पुत्र को भगवान को प्राप्त करने के लिए बाहर भेजने के लिए बिल्कुल हिचकिचाई नहीं, ये नहीं सोचा कि मेरा बच्चा मेरे से दूर चले जाएगा, अब मेरा देखभाल कौन करेगा, आगे चल के क्या होगा मेरा, अपने बारे में नहीं सोचा सुनीति महारानी ने। केवल ये सोचा कि ध्रुव महाराज को खुश करने के लिए या उसकी भलाई के लिए क्या कर सकती हूं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने ठान लिया कि वो भी जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे और भगवान को प्राप्त करके अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। उधर जैसे ध्रुव महाराज राजमहल से बाहर निकल पड़े जंगल की ओर, तो बहुत दूर वैकुंठ में भगवान नारायण बैठे थे। उन्होंने देखा, अरे ये कौन जा रहा है जंगल की ओर, ये तो 5 साल का ध्रुव है, जंगल में जा रहा है। तो तुरंत नारायण ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि को वहां भेज दिया, कहा जाके देखो और वहां जाके इस बालक को दीक्षा दे दो। तो नारद मुनि वहां पर हाजिर हुए। आप तो जानते हैं कि नारद मुनि सब जगह भ्रमण करते हैं, उनके लिए ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां वो जा नहीं सकते, उनको वीजा पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, सब जगह जाते हैं, उनको कहीं का टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको जहां भी जाते हैं अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, और उनके पास अस्त्र क्या है, उनका पासपोर्ट क्या है, उनकी वीणा जिस पे वो केवल भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से जब नारद मुनि चलते आए तो ध्रुव महाराज के सामने आए। ध्रुव महाराज ने देखा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके नारद मुनि ने कहा कि अरे कितने आश्चर्य की बात है, देखो क्षत्रिय कितने अद्भुत होते हैं, उनके अंदर ये मान अपमान की भावना कितनी तीव्र रहती है कि ये बच्चा 5 साल का होने के बावजूद इतना अपमानित हो गया, उसको इतना बुरा लगा कि अपने घर को भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो नारद मुनि कहने लगे, अरे बालक ध्रुव, अभी तुम तो केवल 5 साल के हो, अपने भाग्य में या किस्मत में जो होता है उससे संतुष्ट रहने के लिए हमें सीखना चाहिए। अगर हम अपने प्रारब्ध से संतुष्ट रहेंगे तो हम खुश रह सकते हैं, अन्यथा संसार में सुख प्राप्त करना असंभव है। और वैसे भी ये जान लो कि तुम जंगल में जा रहे हो भगवान की प्राप्ति के लिए, यहां तो बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि साधु इतने सब गए हुए हैं, बहुत तपस्या उन्होंने की है, और फिर भी इनमें से कई लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो तुम जा रहे हो एक बहुत कठिन काम के लिए, और वैसे भी तुम्हारी उम्र क्या है, केवल 5 साल, तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने के लिए, तपस्या करने के लिए कोई ये समय नहीं है, अभी घर लौट कर चले जाओ, राजमहल के आराम में रहो, और जब तुम्हारा उम्र बढ़ जाएगा उस समय तुम वापस तपस्या करने के लिए आ जाना, इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है, और वैसे भी जंगल में कितने सारे जानवर रहते हैं, शेर, भालू और नाना प्रकार के जहरीले सांप रहते हैं, वहां पर खाओगे क्या, पियोगे क्या? वहां पर केवल पत्ते और जड़ी बूटियां, थोड़े बहुत फल मिलते हैं, इससे संतुष्ट रहना होगा। और इसके अलावा कितनी ठंडी होगी, कितनी गर्मी होगी, बारिश होगी, ये सब चीजें होंगी, तो तपस्या ये कोई आसान बात नहीं है। कोई साधारण बच्चा जाकर ऐसे तपस्या नहीं कर पाएगा, बहुत कठिन परिस्थिति होती है। तो अभी लौट जाना। उस समय ध्रुव महाराज ने जवाब दिया, हे मुनिवर, आपने जो उपदेश दिए हैं वो अवश्य बहुत ही उचित हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने मन को शांत करना चाहता है, और आपके उपदेश का पालन करने से अवश्य व्यक्ति खुश हो सकता है संसार में और अपने जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन मैं तो तमोगुण से ढका हुआ हूं, इसलिए आपके आदेश को, आपके संदेश को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो मेरे हृदय तक पहुंच नहीं रही है। वैसे हालांकि मैं बच्चा हूं, फिर भी मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय जन्म के अनुसार मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरा जो स्वभाव है, उसको मैं बदल नहीं सकता। जो मेरी विमाता के वचन है, उनके जो वाक्य थे, उन वाक्यों ने मेरे हृदय को, कोमल हृदय को तोड़ दिया है, ऐसे चुप गया है मेरे हृदय को कि मैं इसको अभी सुधार नहीं सकता। मेरा हृदय एक मिट्टी के घड़े के बराबर है जो इस वक्त टूट गया है, और मिट्टी के घड़े की मरम्मत नहीं की जा सकती। एक बार मिट्टी का घड़ा टूट गया तो टूट गया। तो इस प्रकार से मेरा हृदय तो टूट चुका है, और वैसे भी मैं इस समय क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अपमान को सहन नहीं कर सकता। ये सारे जो आदेश उपदेश आपने दिए हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की प्रवृत्ति जिनमें है, जो ऐसे आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, उनके लिए है। लेकिन क्योंकि मुझे, मेरे अंदर क्षत्रिय खून बह रहा है, तो ये अपमान सहन करना मेरे लिए असंभव है। इसलिए आपके उपदेश मेरे हृदय तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहा हूं। इसलिए आप मुझे कृपा करके ऐसा कोई उपदेश दें जिससे कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, भगवान की कृपा को प्राप्त करूं, ताकि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। मेरी इच्छा ये है कि मैं एक ऐसे राज्य को प्राप्त करूं जो मेरे पिता, मेरे दादा, यहां तक कि ब्रह्मा जी के राज्य से भी बढ़कर होगा। मुझे ऐसा एक राज्य चाहिए, और ये इच्छा मेरे हृदय में तीव्र रूप से बनी हुई है, इसको मैं हटा नहीं सकता। तो कृपया इसका मार्ग निकालिए, और मैं मेरी इच्छाओं को तृप्त कैसे कर सकता हूं, ये मुझे बताइए। जब नारद मुनि ने देखा और सुना ध्रुव महाराज के विचार, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हो गया। सोचने लगे कि देखो, इतनी दृढ़ता ये 5 साल के बालक में, वास्तव में ये क्षत्रिय बड़े आश्चर्यजनक होते हैं, इनके अंदर किस प्रकार की शक्ति होती है। और फिर नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपदेश देता हूं, तुम मधुवन नाम के स्थान में जाना जो कि मथुरा के पास में है। ये मधुवन आज भी ब्रजभूमि में है, और जब कोई ब्रजभूमि के या वृंदावन के तीर्थ यात्रा में जाता है, तो हो सकता है वो मधुवन भी होकर आए। मधुवन में आगे चलकर त्रेता युग में शत्रुघ्न, जो कि श्री राम के छोटे भाई थे, उन्होंने लवणासुर नाम के एक राक्षस का वध वहां पर किया था, और फिर वहां पर राजगद्दी संभाली थी। तो उसी मधुवन में ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए गए, क्योंकि नारद जी ने उनको वहां भेज दिया, और नारद जी ने उनको उपदेश दिया, कहा कि अपने मन को नियंत्रण कर लो, अपने इंद्रियों को संयमित रखो, और अपने शरीर को भी ध्यान की मुद्रा में रख के बैठो। तुम्हारे हृदय में स्थित भगवान श्री हरि के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। अष्टांग योग का पथ का पालन करो, क्योंकि यह सत्ययुग का समय था और सत्ययुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अष्टांग योग था। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग होते हैं और इन चारों युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग अलग अलग बताया जाता है। त्रेता युग सत्ययुग में मार्ग अष्टांग योग का था, ध्यान। जब योगी जाके ध्यान में बैठते थे, अष्ट अंग जिसमें नाना प्रकार के आसन, प्राणायाम इत्यादि करते थे, उसको अष्टांग योग कहते। त्रेता में यज्ञ, द्वापर में आराधना भगवान के श्री विग्रह की और कलयुग में हरि कीर्तन। तो ये अलग अलग युग धर्म है। तो क्योंकि उस समय सत्ययुग था तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को अष्टांग योग का पथ बताया, लेकिन स्पष्ट रूप से ये भी कहा किस तरह से उनको भक्ति की प्राप्ति की जाए, और उन्होंने बताया कि किन की भक्ति करनी चाहिए। वही भगवान जिनका वर्ण मेघ वर्ण है, जो इनके नयन कमलों की तरह है, जो पीतांबर धारण करते हैं, जो गरुड़ के ऊपर सवार होकर चलते हैं, और ऐसे सुंदर रूप से भगवान श्री हरि का वर्णन नारद जी ने कहा और बताया ध्रुव महाराज को कि आपको यही श्री हरि जो कि तुम्हारे हृदय में स्थित हैं, उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ध्यान हमें केवल भगवान के सुंदर रूप के ऊपर करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें जो मन में आया उसके ऊपर हम ध्यान करें। कई ऐसे संस्थाएं होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं किसी भी चीज के ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध साधु थे, सन्यासी थे, जिन्होंने कहा आप एक भैंस के ऊपर भी कर सकते हैं। वैसे ये बहुत प्रसिद्ध उनका वाक्य है कि भैंस के ऊपर भी ध्यान को केंद्रित करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब था कि यतमत ततपत, जितने लोगों के अलग अलग मत होते हैं, पद्धतियां होती हैं, उस हिसाब से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक पद्धति हमें स्वीकारना होगा। जो भी जाता है रेलवे स्टेशन पर, किसी भी गाड़ी में बैठ जाता है, वो दिल्ली पहुंचता है। वो कहने का मतलब था उनका। लेकिन ऐसे होता है क्या? नहीं होता। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही टिकट लेना होगा और दिल्ली की गाड़ी में ही बैठना होगा। आपने टिकट लिया बंबई का, आपको जाना है दिल्ली और बैठे कलकत्ते की गाड़ी में, तो क्या होगा कुछ? और बोलेंगे कि जी इंडियन रेलवे भारतीय रेल की गाड़ी है, किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ आप जाएंगे, क्या हो सकता है, ये संभव है? नहीं। तो उसी प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर हम ध्यान करेंगे और हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, क्या यह संभव है? नहीं है। तो नारद मुनि बताते हैं कि ध्यान क्या चीज है। स्पष्ट उन्होंने विषय बताया, उन्होंने ये नहीं कहा किसी पत्थर के ऊपर ध्यान करो, किसी प्रकाश के ऊपर, ज्योति के ऊपर ध्यान करो, भैंस के ऊपर ध्यान करो, नहीं। उन्होंने साफ साफ बताया तुम्हारे हृदय में जो भगवान विराजे हैं उनके ऊपर ध्यान करना, और उस भगवान का वर्णन भी विस्तार में नारद देव ने कहा। यह भी कोई काल्पनिक बात नहीं है। ध्यानावसित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनः, ये है ध्यान का केंद्र बिंदु, भगवान श्री हरि। इस प्रकार से नारद मुनि आगे कहने लगे। फिर वहां जाकर मिट्टी से भगवान के एक अर्चा विग्रह बनाना, और वहां जंगल में जो भी सामग्री उपलब्ध है, जल है, जड़ी बूटियां हैं, फल फूल हैं, ये सब चीजें हैं, भगवान को अर्पण करो और उनकी पूजा आराधना करना, उनकी सेवा करना। और इस प्रकार से तुम सेवा करते रहोगे, धीरे धीरे से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ध्रुव महाराज ने ये सारा प्रवचन सुनकर, ये आदेश उपदेश सुनकर उनको बड़े खुश हुए वो। और फिर नारद मुनि की उन्होंने परिक्रमा की, परिक्रमा करके दंडवत करके फिर मधुवन की ओर चले। मधुवन में जब वो चले गए तो जैसे नारद मुनि ने बताया था वैसे ही वो भगवान श्री हरि की सेवा करने लगे और अंदर ही ध्यान करने लगे। थे वो केवल 5 साल के, लेकिन ऐसी कड़ी तपस्या उन्होंने आरंभ की जिसको देखकर सारे देवी देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। पहले महीने में हर 3 दिन में ध्रुव महाराज खाते थे। क्या खाते थे? केवल वहां के जो जड़ी बूटियां हैं थोड़े बहुत, वो 3 दिन में एक बार खाते थे। दूसरे महीने में हर 6ठे दिन केवल वो खाते थे। और क्या खाते थे? सूखे पत्ते जो कि नीचे गिरे थे पेड़ से। फिर तीसरे महीने में हर 9वें दिन वो खाने लगे, 9 दिन के बाद। और उस समय क्या लेते थे? उस समय केवल जल पान करते थे। और फिर 4थे महीने में हर 12वें दिन पानी पीना भी छोड़ दिया और केवल सांस लेते थे, सांस के ऊपर ही जी रहे थे, क्योंकि सत्ययुग में प्राण जो है वो प्राण में, जो प्राण है वो आकाश में या जो अपने हड्डियों के भीतर भी रह सकती थी, लेकिन आजकल जो प्राण है वो केवल अन्न में रहता है। इसलिए अन्न के बिना हम नहीं जी सकते हैं, जल के बिना हम नहीं जी सकते। लेकिन उस समय ध्रुव महाराज अन्न के बिना जल के बिना रह पाए। और फिर अगले महीने में हर 15 दिन वो केवल सांस भी नहीं लेते थे, सांस भी रोक के रख लिया उन्होंने। और एक बार केवल सांस लेते थे और उसके बाद में सांस लेना भी उन्होंने बंद कर दिया। और धीरे धीरे वो खड़े होते थे तो एक पैर पे खड़े होते और वो भी एक पैर को उठाकर। और इस प्रकार से जैसे जैसे उनकी तपस्या बढ़ती रही, उनका वजन इतना बढ़ गया उनकी योग शक्ति के बल पर, मानो ऐसा पृथ्वी माता को लगा कि जैसे एक नौके को लगता है जबकि वो नदी में चल रही है और उस नौके के ऊपर हाथी इधर उधर नाच रहा है। अगर छोटा नौका है और हाथी उधर गोलमाल करे तो फिर क्या होगा, क्या दशा होगी नौके की? उसी तरह से पृथ्वी माता को ध्रुव महाराज के एक पैर का जो वजन है वो असहनीय लग रहा था। सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, ध्रुव महाराज इतने कैसे भारी हो गए। उधर ध्रुव महाराज की तपस्या के बल पर सारे ब्रह्मांड का प्राण वायु उन्होंने खींच लिया और ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक, तपलोक, महलोक, जनलोक में भी, वहां देवी देवता विद्याधर, चारण, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, ये सारे लोग सांस नहीं ले पाए। बड़े चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, ये क्या समस्या है, हम क्यों सांस ले नहीं सक रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, सभी चिंतित होकर। फिर ब्रह्मा जी भी उनको भगवान विष्णु के पास लेकर आए। विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, ये महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज हैं, वो तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है, लेकिन मैं अभी जाकर समस्या का समाधान करता हूं, आप सब वापस अपने अपने धाम में चले जाइए। तो उस समय सारे देवी देवता संतुष्ट हुए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने उनको आश्वासन दिलाया था कि समस्या का समाधान होना है। और जब वो भगवान विष्णु गरुड़ वाहन के ऊपर सवार हुए और आए ध्रुव महाराज के पास में, उस समय ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु को के ऊपर ध्यान करके बैठे हुए थे। जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, उस समय ध्रुव महाराज को पता नहीं चला, लेकिन ध्रुव महाराज जो अंदर ही अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे, वो दर्शन, वो ध्यान टूट गया। ऐसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो 24 घंटे अपने अंतःकरण में भगवान श्री हरि का दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन श्री गोविंद की स्तुति करता हूँ, उनको नमन करता हूँ जिनका दर्शन श्याम सुंदर रूप में वो ऐसे संत और भक्त करते हैं जिनकी आंखों में प्रेम या भक्ति का अंजन लगाया हुआ है और जो अपने हृदय में ही भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन 24 घंटे किया करते हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज जो अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे, अब वही भगवान बाहर से प्रकट हुए थे, स्वयं वैकुंठ से चले आए थे गरुड़ के ऊपर सवार होकर। तो जैसे ही भगवान विष्णु वहां पर हाजिर हुए तो ध्रुव महाराज का दर्शन टूट गया, और जब टूट गया तो आंखें खुल गई कि क्या बात है, क्यों मेरा ध्यान टूट गया, भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, कहां चले गए भगवान। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि सामने भगवान श्री विष्णु वहां पर उपस्थित है, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, पीतांबर धारण किए हुए, वही कमल नयन और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वहां पर हसमुख चेहरे से आशीर्वाद की मुद्रा में वहां पर खड़े थे। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया और तुरंत उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। अष्ट सात्विक विकार मतलब वो शरीर और मन में वो विकार जो कि शुद्ध भक्ति की वजह से आते हैं। शरीर में कंपन होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु धारा होने लगी, कंठ गदगद हो उठा। इस प्रकार से ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पाए, कुछ सुन नहीं पाए, कुछ देख नहीं पाए, उनके सारे जो इंद्रियां हैं बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी। ओ, उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए। केवल अंतःकरण से उनको इतने दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही थी कि इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, और आंखों से अश्रु प्रवाह होने की वजह से वो ठीक से भगवान का दर्शन कर भी नहीं पाए। लेकिन फिर भी जितना हो सका वो भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करते रहे। उनके मुंह से वो भगवान की स्तुति करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि कंठ गदगद हो उठा था। और उस समय भगवान विष्णु ने कृपा की ध्रुव महाराज के ऊपर और अपने शंख से ध्रुव महाराज के सर का स्पर्श किया। ये उदाहरण शायद आप सुने होंगे पहले कि पुराने काल में जो टेप रिकॉर्डर के बजाय वो घूमने वाले रिकॉर्ड प्लेयर रहा करते थे, आपके गाने सुनने होते थे तो घूमने वाला रिकॉर्ड प्लेयर होता था, वो गोल गोल घूमता था और उसके ऊपर एक कांटा होता था, जब वो कांटा उस रिकॉर्ड को लगता था तो गाना बज जाता था। तो वो कांटा क्या था, वो कांटा था भगवान श्री विष्णु का शंख, और रिकॉर्ड क्या थे, ध्रुव महाराज। तो जैसे ही भगवान ने ध्रुव महाराज के सर का स्पर्श उस शंख से किया तो तुरंत ध्रुव महाराज के मुखारविंद से सुंदर सुंदर स्तुतियां बाहर आने लगी। ये एक 5 साल के बालक के लिए साधारणतः संभव नहीं है। 5 साल के बालक तो क्या, किसी बड़े व्यक्ति के लिए भी ये संभव नहीं है। लेकिन ध्रुव महाराज के मुख से इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान श्री विष्णु के गुणगान में होने लगी कि भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव महाराज ने बहुत प्रार्थना की, भगवान का गुणगान किया और अंततः क्या बोलने लगे, जब भगवान ने पूछा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्थानाभिलाषे तपसि स्थितोऽहं त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं काचं विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नं स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने स्थान की अभिलाषा की थी। किस स्थान की? एक ऐसे पद की जो कि ब्रह्मा जी के पद से भी श्रेष्ठ है। मैं सारे ब्रह्मांड के राज पद को प्राप्त करने के लिए मैं इच्छुक था, स्थानाभिलाषी। और इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तपस्या में स्थित कर दिया, तपसी स्थितो हम। और अब मैंने आपको प्राप्त कर लिया, त्वाम प्राप्तवान। और आपको प्राप्त करना देव मुनीन्द्र गुह्यम, देवताओं को, बड़े बड़े मुनियों को भी प्राप्त करना जो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, गुह्य। लेकिन मैंने आपका दर्शन कर लिया, मैंने आपको प्राप्त कर लिया। और इतना ही नहीं, जब मैंने आपको प्राप्त किया है तो मुझे क्या लग रहा है? दिव्य रत्नम, मुझे एक दिव्य रत्न प्राप्त हो चुका है, काचम विचिन्वन। लेकिन मैं आपके पास आया था टूटे हुए कांच के टुकड़े प्राप्त करने के लिए, लेकिन मुझे अब मिला क्या है? अनमोल रत्न मिले हैं। इसलिए स्वामिन कृतार्थोऽस्मि, मैं पूरी तरह से अभी संतुष्ट हूँ। वरम न याचे, अब मुझे कोई वरदान, कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। आपका दर्शन हुआ, आप हृदय में आपके प्रति भक्ति की भावना हुई, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। तो देखिए कितनी सुंदर बात ध्रुव महाराज ने कही भगवान से। हमें इस कथा से बहुत कुछ सीखना चाहिए, परंतु इस घटना से ये एक बात तो अवश्य हम सीख सकते हैं कि जो व्यक्ति सारे ब्रह्मांड के राजपद को तुच्छ समझता है, टूटे हुए सड़क पे पड़े हुए कांच के टुकड़ों के बराबर समझता है और भगवान की भक्ति को अनमोल समझता है, तो फिर हमें कितना और हमारे धन संपत्ति को तुच्छ समझना चाहिए। हमारे पास कम से कम सारा ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड तो क्या, इस एक पृथ्वी लोक के राजपद की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। राजपद, पृथ्वी के राजपद की बात तो दूर है, अपने घर में घर का पद हमें राजपद मिला उतना बहुत हो जाएगा आजकल के हिसाब से। आजकल हर एक घर में हर एक जगह ऐसी परिस्थिति है, कोई किसी की बात सुनता नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने पद में, अपने अपने पथ में चलते रहते हैं। जिनकी बात घर में सुननी चाहिए कोई सुनते नहीं है। तो जो हम कलयुग में ऐसे परिस्थिति में आ चुके हैं कि छोटे से परिवार को भी संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात कोई सुनते नहीं है, तो फिर ये देश का राजपद, उसके बाद पृथ्वी लोक का राजपद और फिर ब्रह्मांड का राजपद, कितनी ऊंची बात ध्रुव महाराज प्राप्त करने के लिए भगवान के पास गए थे। और भक्ति प्राप्त करने के बाद वो सोच रहे हैं कि ये तुच्छ है। तो इसलिए हमें कितना और ऐसे समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति वास्तव में कितनी अनमोल है, कितना शुद्ध है, कितना आनंद प्रदायक है। ध्रुव महाराज को इतना आनंद मिला कि उस आनंद के सामने सारे पृथ्वी का भोग और सुख भी उनको बिल्कुल आकर्षित नहीं कर पाया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। वो कहते हैं यम लब्ध्वा, जब हम इस चीज को प्राप्त करते हैं, किस चीज को? भक्ति को, तो क्या होता है? च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, व्यक्ति मानने लगता है कि इससे बढ़कर, इससे अधिक कोई भी और चीज या व्यक्ति नहीं है। और यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जब बड़े से बड़े गुरुण अपि, गुरु मतलब बहुत भारी, भारी से बाहर भारी दुख या संकट में स्थित होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के शुद्ध भक्ति में स्थित होता है, वो क्या होता है, उसकी दशा क्या होती है? न विचाल्यते, बिल्कुल विचलित नहीं होता है, दूसरे शब्दों में जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, नहीं केवल वो संसार के सुख को तुच्छ मानता है परंतु वो संसार के दुख को भी तुच्छ समझता है। दोनों सुख और दुख संसार के लिए, संसार में उसके लिए बिल्कुल सड़क पर पड़े हुए तृण के बराबर लगते हैं, कोई परवाह नहीं करता उनके बारे में। जैसे कि प्रहलाद बिल्कुल परवाह नहीं की मान अपमान की, तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने अपने अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो ध्रुव महाराज के पथ में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी अपमान को अपमान के का बदला लेने के लिए जंगल में जाकर तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करके इसी बात को सीखने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्रुव महाराज के उदाहरण से ही हम सीख सकते हैं, बिना जंगल में गए हुए, बिना अपमान सहन किए हुए। अपमान तो होता ही रहता है हर बद्ध जीव का, और सबसे बड़ा अपमान जीव के लिए है कि उसको ये एक भौतिक शरीर मिला है। सबसे बड़ा अपमान ये भौतिक शरीर है क्या? केवल दुख का कारण है, गंदी जगह है ये भौतिक शरीर, कोई अच्छी बात नहीं है इस भौतिक शरीर में। हमें हर रोज स्नान करना पड़ता है, साफ कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसका इलाज कराते रहना पड़ता है। क्या रखा है इस शरीर में? कुछ नहीं है। अगर एक बहुत बड़े घराने का लड़का, बहुत सुसंस्कृत सुशिक्षित घर का अमीर परिवार का लड़का, अगर आप उसको गटर में शराब पीकर पड़े हुए देखेंगे तो क्या है, आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि ये कितने दुख की बात है, कितने अच्छे घर का लड़का और देखो अभी क्या परिस्थिति है। क्या ये अपमान नहीं है? अपमान की अवस्था नहीं है उसके लिए? ठीक उसी प्रकार से कहां जीव भगवान के धाम में, भगवान श्री कृष्ण के संग में सच्चित आनंद जीवन बिताता है, और कहां पर ये संसार में आके इस नश्वर भौतिक शरीर को ग्रहण करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को भोगता है। कभी पशु की योनि, कभी पक्षी की योनि, कभी कीड़े की योनि, कभी राजा तो कभी रंक, ऐसे 84 लाख योनियों में बार बार भ्रमण कर करके हर बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जन्म बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु, इन 4 घटनाओं का बार बार दर्शन करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। ये दशा है जीव की, उस आत्मा की, जो कि इस भौतिक संसार में आया है। तो कितना अपमान हो रहा है आत्मा का? आत्मा को चाहिए सच्चिदानंद जीवन, जो कि उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। लेकिन इस स्वरूप को भूलकर वो यहां इस गटर में आकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, और इस गटर की अवस्था में आकर वो सोचता है कि कितना अच्छा वातावरण है। जैसे कि शराब पीकर जब आदमी गटर में पड़ा रहता है और होश में आता है तो वो भी सोचता होगा कि कितना मेरा बंगला अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, मेरे साथ में कितने अच्छे अच्छे प्राणी हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, इससे बढ़िया घर कहां मिल सकता है। तो इस तरह से जो शराब के नशे में आदमी रहता है वो अपने ही स्थान को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ये नहीं सोचता कि मैं कितनी गंदी जगह में आया हूं, वास्तव में कितना मेरा अपमान हुआ है। इंद्रदेव के बारे में कथा की जाती है कि एक बार बृहस्पति मुनि के प्रति इंद्रदेव ने अपराध किया और बृहस्पति ने इंद्रदेव को शाप दिया कि उसे एक सुअर का शरीर मिलेगा। देखिए कितना बड़ा अपमान है ये, कहां स्वर्ग के राजा इंद्रदेव और कहां एक सुअर, भले वे सुअरों के राजा क्यों ना हो फिर भी सुअर थे। तो जब सुअर का शरीर मिला तो इंद्रदेव भूल गए कि मैं पिछले जन्म में इंद्रदेव था, और इस शरीर में रहकर वो भोग करने लगा। सुअर कैसे वातावरण में रहता है? सुअर तो आके किसी बंगले में नहीं रहता, उसे आप अच्छे से बंगले में लाकर ले आए वो साफ जगह में रह नहीं पाएगा, उसे गंदगी ही चाहिए। और अपने उस गंदगी को ही वो सब कुछ मानता है। तो इस प्रकार से वो सुअर वहां पर जब उसने जन्म लिया, बड़ा हुआ, क्योंकि पिछले जन्म का इंद्रदेव था तो सुअर समाज में भी बड़ा तगड़ा शक्तिशाली निकला और वो भी उनका राजा बन गया। फिर कई रानियां हुई, कई बच्चे हुए और फिर सब लोग समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। उनको नेता भी चुना गया, चुनाव में जीत गए, सब कुछ हो गया, बड़े आदमी बन गए उनके समाज में। कोई भी चीज उनकी उनकी अनुमति के बिना नहीं होता था। और ऐसे समय बीतता गया। उधर नारद मुनि सोचने लगे, कृपा किए उन्होंने इंद्रदेव के ऊपर, सोचा कि बृहस्पति के प्रति अपराध करने की वजह से इंद्रदेव को एक सुअर का जन्म मिला है, लेकिन ये इंद्रदेव जो अब सुअर के शरीर में है, वापस स्वर्ग लोक लौटने की कोई लक्षण दिखा नहीं रहा है। उसे ऐसे लग रहा है कि वो यहीं पर रहना चाहता है। तो इंद्रदेव ने सोचा कि जाके थोड़ा बहुत माजी इंद्रदेव से बात करें। अभी रिटायर हो चुके थे ना, इंद्रदेव नहीं थे अभी। तो जाके सुअर से कहने लगे कि अरे तुम्हें याद नहीं तुम कौन हो या कौन थे? पिछले जन्म में तुम देवराज इंद्र थे, तुम नंदन कानन में रमण करते थे, देवता तुमसे आदेश लेते थे, उपदेश लेते थे, असुरों का वध तुमने किया है और आज तुम्हारी क्या परिस्थिति? सुअर के समाज में हो तुम, चलो लौट के क्यों नहीं आते? तो उस समय वो सुअरों का राजा शुकर राज, उसने इधर उधर देखा, अपना सारा अपने विस्तारित रूप को दे रूपों को देखा, उसके कुटुंब बच्चे और छोटे छोटे सुअर से ओई 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 करके आवाज कर रहे थे और सब इर्द गिर्द घूम रहे थे। और उस समय शुकर राज सोचने लगे, कहने लगे नारद मुनि से, देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे अच्छे रानियां हैं, मेरा घर में कितना सुख है। आप देखोगे है कोई घर यहाँ सारे संसार में जहाँ पत्नी बच्चे पति की बात मानते हैं? लेकिन मेरा घर ऐसा है, देखो। और इतना ही नहीं, न केवल मेरा कुटुंब मेरी बात मानती है, लेकिन सारा मेरा जो समाज है वो मुझ पर निर्भर है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसको माया कहते हैं। जब आदमी सोचने लगता है कि मेरे बिना क्या होगा, जैसे कि देश के नेता भी राजनीति में, हर एक देश में सोचते हैं, हर एक देश का नेता सोचता है कि मेरे बिना क्या होगा, वो नहीं जानते हैं कि अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से ये भी शुकर राज भी सोच रहे थे कि मेरे बिना क्या होगा, इस सारे समाज का क्या होगा। तो कहने लगे, नहीं और थोड़ी देर हम रहेंगे यहाँ, अब नहीं आएंगे। और बार बार जब भी नारद मुनि वहां आए तो शुकर राज जो कि पहले इंद्रदेव थे यही बताते रहे। और आखिर में नारद देव को बहुत कृपा हुई, उन्होंने वध कर दिया इस सुअर का और वापस उसे इंद्रदेव के शरीर में भेज दिया। कहने का मतलब है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में क्यों न हो, हमें लगता है कि यही सब कुछ है, यही सर्वश्रेष्ठ है। और जिस स्थिति में हम हैं, हम उसी स्थिति का सुधार करने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ऐसे कार्य क्यों न करें जिससे कि ऐसे परिस्थिति में हमें पुनः कभी नहीं आना पड़े। जैसे कि जो जेल में कैदी रहते हैं, ज्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे जेल के भीतर अच्छे से अच्छे सुविधाएं कैसे लाए जाएं, हमारे कमरे के अंदर टेलीविजन आ जाए, हमें थोड़ा अखबार मिले, अच्छी गद्दी मिले, अच्छा भोजन मिले, थोड़े स्नान करने के लिए गर्म पानी मिले, ऐसा ही सोचता है। लेकिन कितने ऐसे कैदी हैं जो सोचते हैं कि मैं अच्छी तरह से व्यवहार करके जल्दी यहां से जेल से निकल जाऊं, मुक्त हो जाऊं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं, जेल को ही अपना सब कुछ मानकर वहीं का सुधार करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से संसार में कोई व्यक्ति सोचता नहीं है कि मैं इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करते आया हूं अनादिकाल से, मैं शुद्ध जीवात्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं और मेरा स्वाभाविक स्थान है भगवान के धाम में, लेकिन उस धाम को छोड़कर मैं यहां पर आया हूं, कितना अपमानित हुआ हूं, क्या मेरी दुर्दशा है। और ऐसे अवस्था में रहकर भी मैं सुविधा को बढ़ाने का प्रयास केवल कर रहा हूं, लेकिन भगवान के धाम में लौटने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ये आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार से अपमान तो यहां सबसे ज्यादा हमारा हो रहा है, क्योंकि हम शुद्ध जीवात्मा अब यहां भौतिक शरीर धारण करके बैठे हैं और भौतिक शरीर को एक के बाद एक, एक के बाद एक नाना प्रकार के दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं। इनका कोई अंत नहीं, जन्म से मृत्यु तक कष्ट ही कष्ट। ये संसार दुखों का सागर है, दुखालयम अशाश्वतम। यहां किस प्रकार का सुख मिलता है? हमारे जीवन का उद्देश्य है। लोग नहीं समझते कि कितने अपमान की स्थिति, अपमानित स्थिति में है, कितने तुच्छ स्थिति में है। तो खैर, ध्रुव महाराज सोच रहे थे कि मुझे, मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा हुई है कि उन्होंने मुझे दर्शन दिया है, हृदय में उनके प्रति मेरी भक्ति जागृत हो गई है, अब मुझे ये संसार से क्या लेना देना, ब्रह्मांड के राजपद भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस पद को प्राप्त करके भी मेरे कष्ट खत्म नहीं होने वाले हैं। और ये हम देखते हैं कि हम जीवन में जितने भले ऊंचे पद में जाएं, कष्ट समाप्त नहीं होते। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनः आवर्तिनो अर्जुन, माम उपेतित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर, जो कि सबसे ऊंचा लोक है ये ब्रह्मांड में, पाताल लोक तक, जो कि सबसे नीचा लोक है, यहां सब जन्म और मृत्यु के लोक हैं, और जो ऊपर जाएगा उसे नीचे यहां लौटकर आना होगा। कोई भी यहां स्थान शाश्वत नहीं है, सब क्षणिक है यहां पर। इसलिए ध्रुव महाराज के अनुभव से हमें सीखना चाहिए कि हमें किसी ऊंचे पद की या धन की या संपत्ति की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलकर ही रहेगा, उसे एक पैसा कम नहीं, एक पैसा ज्यादा नहीं। जब हमारा भाग्य निश्चित है तो केवल हम ये संसार की चीजों के पीछे क्यों भागते रहें? क्यों न हम अपना मूल्यवान मनुष्य जीवन का समय केवल भगवान की भक्ति के लिए बिताएं, जो कि हमारा असली धन है, जिसको कि ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया था। अंग्रेजी में कहावत है जिसका अनुवाद हिंदी में इस प्रकार होता है कि अनुभव सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि अनुभव लेकर ही फिर हम जान सकते हैं कि वास्तव में इन भौतिक चीजों के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे फिर निराश हो जाएंगे, धक्के खाएंगे, तब हम इस पथ को त्यागेंगे और भक्ति में आएंगे। क्यों? क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, इस बात को वो कहते हैं। लेकिन ये सुभाषित जो है, इसका जो अगला हिस्सा है वो नहीं जानते। अगला हिस्सा क्या है? अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है और मूर्ख कोई अन्य पद से नहीं सीखता। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है वो हर चीज का अनुभव करके ही सीख सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दूसरों के अनुभव से ही सीख लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे भी अनुभव करके जानना होगा। अब वो देखता है कि किसी चोर, कोई चोर पकड़ा गया है, उसकी पिटाई हो रही है, जेल में भेजा जा रहा है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि चलो मैं भी चोरी करके देखूं, अगर मैं पकड़ा गया, मेरी पिटाई अगर हुई, तब मैं चोरी करना बंद कर दूंगा। अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, ऐसा नहीं कहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, अरे उसकी पिटाई हो गई चोरी करने के बाद, अगर मैंने चोरी की तो मेरी भी पिटाई होगी, इसलिए मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। यह है बुद्धि। तो ठीक उसी प्रकार से ध्रुव महाराज जैसे कितने बड़े बड़े भक्त ऋषि मुनि राज ऋषि हुए हैं इतिहास में, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों में आता है, तो उनके अनुभव से हमें सीख लेना चाहिए। जब ध्रुव महाराज ब्रह्मांड के राज्य पद को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुए और केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करके संतुष्ट हुए, तो ये क्या गारंटी है कि हमें अगर धन मिलेगा तो हम संतुष्ट होंगे? नहीं होगा। केवल भगवान की भक्ति से ही हमें सबसे जीवन की ऊंची सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह ध्रुव महाराज ने जब भगवान से कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ध्रुव, कोई बात नहीं, तुम अब कुछ चाहते नहीं हो मेरे पास से, परंतु सबसे पहले तुम तपस्या करने जब वन में आए थे तो इस उद्देश्य से आए थे कि तुम्हें इस ब्रह्मांड का राजपद चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देकर ही रहूंगा। तुम्हारे लिए खास मैंने एक राज्य बनाया है और वो है ध्रुव तारा। आज भी आप इस ध्रुव तारे को देख सकते हैं उत्तर दिशा में, और जिस प्रकार से एक अगर कोई डंडा हो जिसको जिससे कि आप एक बैल को बांध कर रखो और वो बैल गोल गोल घूमता रहे उस डंडे की ओर, ठीक उसी प्रकार से सारे जो नक्षत्र ग्रह इत्यादि हैं वो ध्रुव तारा के गोल गोल घूमते हैं ब्रह्मांड के भीतर। और ये जो ध्रुव तारा है ये इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ लोक है, और इसी ध्रुव तारे के लोक में वहां पर श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप में एक दूध का सागर है जहां विष्णु क्षीरोदकशाय विष्णु निवास करते हैं, और ये सारा वैकुंठ लोक इस ब्रह्मांड के नाश होने के बाद वो उसका नाश नहीं होता, वो शाश्वत है। और भगवान श्री हरि ने ध्रुव महाराज को ये शाश्वत लोक का राज्य पद प्रदान किया। तो देखिए कितना बड़ा पद, और कहा कि ध्रुव तुम यहां 36,000 वर्ष राज करोगे, हालांकि तुम नहीं करना चाहते, हालांकि तुम्हें राजगद्दी से कोई आसक्ति नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं, इसलिए मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए तुम राज करना, और 36,000 वर्ष के बाद में तुम्हें ध्रुवलोक का राजपद प्राप्त होगा और मेरी शुद्ध भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। और इस तरह से ध्रुव महाराज बड़े संतुष्ट हुए। और आगे चल के ध्रुव महाराज ने क्या किया, क्या कथा है श्रीमद् भागवत में, ये चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। आप सुनना चाहते हैं तो एक हफ्ते बाद आपको आना है रविवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आपके कोई प्रश्न है? सभी ने भौतिक संसार के प्रति आसक्ति पूरी तरह से त्याग दी है? हरे कृष्णा।
आपने कहा कि जब नारद मुनि ध्रुव महाराज से पूछता है तो ध्रुव महाराज बोलता है कि मैं तो पूरा तामस गुण से भरा हूँ, इसलिए मैं
आपके उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता।
हाँ, वो कि जो क्षत्रियों का जो ये ईर्ष्या क्रोध होता है, इसका मतलब है कि जो क्षत्रियों का ईर्ष्या या क्रोध होता है ये तामस गुण से बना होता है।
वैसे शास्त्र में बताया जाता है जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्व गुण में होते हैं, या सही कहा जाए तो जो सत्व गुण में होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ वो सत्वगुण में हो गया, नहीं, जो सत्वगुण में स्थित है उनको ब्राह्मण कहते हैं, जो रजगुण में स्थित है उनको क्षत्रिय कहते हैं, जो रजो और तमो के मिश्रण में है उनको वैश्य कहते हैं, और जो तमो में है उनको शूद्र कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो क्षत्रिय रजगुण में होते हैं, परंतु हो सकता है कि कभी कभी तमोगुण के तमोगुण का भी आवरण किसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए। लेकिन ध्रुव महाराज अब रजगुण के प्रभाव में है, क्योंकि उनका अभी रजगुण बाहर आ गया, प्रकट हो गया, उनका अपमान हुआ है भयंकर और उनको सहन नहीं हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपका उपदेश ब्राह्मण के लिए ठीक है लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय के लिए अपमान असहनीय है। हालांकि वो कहते हैं कि तमोगुण से मेरा हृदय ढका हुआ है, लेकिन वास्तव में वो रजगुण और तमोगुण दोनों के मिश्रण से ढका हुआ है। लेकिन बात यह है कि वास्तव में वो उस समय उपदेश ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं है। संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की परिस्थिति यही है, क्षत्रिय खून नहीं है, तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण है, और इतनी तीव्र इच्छा संसार का भोग करने के लिए कि वो भौतिक या आध्यात्मिक विषयों के बारे में कुछ सुन भी नहीं सकते हैं, बहुत कठिन उनके लिए ये सब सुनना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरित चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्ता नाम बहुत आसक्त होता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ता या दृढ़ भावना से भक्ति जागृत नहीं हो सकती, उसका मन इस आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थिर नहीं हो सकता, समाधि ये स्थिरता उसको नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि उसका मन इतना भोग में लगा हुआ है। इसलिए क्षत्रियों को भक्ति करना कभी कभी कठिन होता है। हरे कृष्ण।
कि इंद्रदेव को जो सुअर का शरीर मिला था तो अंत में नारद मुनि ने उसका वध कर दिया, तो उन्होंने कैसा वध कर दिया?
अभी वो किया होगा, अब ये तो वर्णन नहीं है। नारद मुनि तो महान योगी भी हैं, उनको एक साथ साधारण एक सुअर का वध करना ये कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, उनके पास सारे योग सिद्धियां हैं, वो किसी भी तरह से कर सकते हैं और बिना शरीर का नाश किए हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या असंभव है, वो हर चीज करने के लिए समर्थ हैं। नारद देव न केवल महान भक्त हैं लेकिन महान योगी भी हैं।
दो भक्त महान वैष्णव हुए लेकिन वो पहले क्षत्रिय थी, इनका क्या पूर्व जन्म था कि इनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, या वो तप का बल था जो उन्होंने तपस्या की उसके प्रभाव से ही उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए, क्या कारण?
दोनों है। कोई व्यक्ति ऐसे तपस्या कर नहीं सकता जब तक कि उसके ऐसे पिछले जन्मों से संस्कार नहीं हो। हर कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज की तरह नहीं कर सकता है, या हर कोई व्यक्ति यहाँ आकर रविवार में बेलगाम में राधा गोकुलानंद मंदिर में आके प्रवचन नहीं सुन सकता, कीर्तन में भाग नहीं ले सकता, जब तक कि उसके पूर्व जन्मों के सुकृति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, केवल वही लोग आ सकते हैं। येषां त्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्वन्द्व निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, भजन्ते मां दृढ़व्रताः, कौन मेरा भजन दृढ़ता से कर सकता है? तू अंतगतम पापम, जिसके पाप क्षीण हो चुके हैं। येषां त्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, जिनके पुण्य की पूंजी बढ़ चुकी है, केवल वही लोग मेरी भक्ति दृढ़ता से कर सकते हैं। तो अगर ध्रुव महाराज ने ऐसे दृढ़ता से, इतनी अद्भुत दृढ़ता से की, और वो भी 5 साल के आयु में, तो अवश्य हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे पूर्व जन्म का भी कोई इतिहास है भक्ति का, वरना वो कैसे कर पाते, और वो भी इतने छोटे उम्र में। जिस व्यक्ति के संस्कार हैं पूर्व जन्मों से, वो छोटी उम्र से ही भगवान की भक्ति करता है और बचपन से ही उसकी आसक्ति इस दिशा में हो जाती है। ह्रियते यमशो पिसह, बिल्कुल आसक्त आकर्षित हो जाता है इस मार्ग में, विवश होकर, न चाहते हुए भी उसका आकर्षण इस मार्ग में उसे ले आता है। लेकिन जिसके संस्कार नहीं है, मृत्यु के क्षण भी वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीजें हैं, अपने बल से भी और पूर्व जन्मों के संस्कार से भी ध्रुव महाराज को ये प्राप्त हुआ। और हमें समझना चाहिए कि अंततः भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा से, नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई, तो सब कुछ सफल हो गया ध्रुव महाराज के लिए। इसलिए भक्तों की कृपा प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। भक्तों की कृपा के बिना हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पहले भगवान के भक्त और उसके बाद में भगवान।
प्रभु जी, हम बचपन में हमारे माता पिता ने हमको सुनाते थे, तुम भगवान का भक्ति करो और तुमको भगवान सब कुछ भी दे देगा, और हम ऐसा एक आशा रख के भगवान के पूजन करते थे, क्या ये कर्मश विचार है?
सही है कि अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, दे तो सकते हैं भगवान। भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है देने में या लेने में भी, परंतु अगर हमें भक्ति चाहिए तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए उचित विचार क्या होने चाहिए। हमारे लिए उचित विचार ये होना चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहितुकी त्वयी। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया है कि भक्त की भावना कैसे होनी चाहिए। हमें कोई भी भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी अहितु की सेवा का मौका चाहिए, बस ये भक्ति है। इसको भक्ति, उत्तम भक्ति कहते हैं। हाँ, जब कोई हम पहली बार आते हैं, नए नए भक्ति में आते हैं, तो हो सकता है कि हमारे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हों, और वो इच्छाएं लेकर भी हम भगवान के पास आए हैं तो ठीक है, लेकिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो फिर से भगवान को छोड़कर वापस चले जाएं। तो भगवान फिर अन्य तरीकों से हमें वापस खींच के ले आएंगे, और वो तरीका हमें शायद अच्छा न लगे। इसलिए चाहे हम कोई भौतिक चीज के लिए आए भगवान के पास या शुद्ध भावना से आए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम टिके रहें, शुद्ध भक्तों के संग में रहें, और ऐसे ही हरि कथा का श्रवण कीर्तन करते रहें। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे आपके हृदय में कोई भौतिक कामनाएं न हो, अकाम, या चाहे सर्व कामो वा, आपके हृदय में सारी भौतिक कामनाएं हैं, मोक्ष काम, चाहे आप मुक्ति या मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, फिर भी यजेत पुरुषम परम, आप परम पुरुष श्री कृष्ण का भजन करो। कोई बात नहीं, आपके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं या नहीं है, केवल श्री कृष्ण के शरण में आके रहिए। ये श्रीमद् भागवत का उपदेश है हम सबके लिए।
हमें भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना एक नाम अपराध में आता है।
नहीं, बढ़ा के नहीं रखना है हमें, लेकिन केवल सोचने मात्र से ये भौतिक इच्छाएं जाते भी तो नहीं है ना। अगर किसी के व्यक्ति हृदय में ये भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या उसे भक्ति में आना ही नहीं चाहिए? अगर ऐसा होता तो कौन आ सकता था भक्ति में? आखिर हम भक्त बने कैसे? इतने जन्मों से भौतिक इच्छाएं रही हैं और भक्ति मार्ग में आने के बाद ही सब कुछ शुद्ध हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में आते हैं, श्रवण कीर्तन करके, नित्यम भागवत सेवया, ये करके क्या होता है, हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और शुद्ध भक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है।
हरे कृष्णा।
हरे
प्रभु जी, आपने बताया कि पूर्व जन्म के कार्यों से हमें भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन पुण्य कार्य किया तो हम स्वर्ग लोक ऐसा जाएंगे?
पुण्य नहीं, सुकृति, ये आध्यात्मिक पुण्य है, आध्यात्मिक सुकृति है, साधारण पुण्य नहीं। जैसे संसार में साधारण पुण्य क्या होता है, अंधों की मदद करना, कुएं खोदना, लोगों के लिए गरीबों को पैसे देना या मरीजों को दवाइयां देना, ये सब साधारण पुण्य कार्य है, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक कार्यों के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, और जब भक्ति के जो सुकृति है या तो ऐसे सुकृति की पूंजी जब बढ़ जाती है तब अगले जन्म में या उसके बाद वाले जन्म में या कभी भी हमें भक्तों का संग मिलता है जिसमें कि हम भक्ति की और वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है,
भक्ति की सुकृति बढ़ेगी कैसे? पहले 1% स्टार्ट होगा कैसे भक्ति की? कुछ तो करना चाहिए।
भक्तों का संग से, भक्तों की कृपा से। अज्ञात सुकृति भी हो सकती है, कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है और अचानक भक्त लोग वहां नगर संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, उसने हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन सुना, और विदेशों में ऐसे ही तो हुआ है, उन्होंने जन्म से तो कृष्ण और राम का नाम तो सुना नहीं था, लेकिन बीच बीच में कभी कोई भक्त पुस्तक वितरण के लिए उनसे मिलते थे या तो नगर संकीर्तन करते हुए वहां से गुजरते थे और ये लोग सुन लेते थे भगवान का नाम, और उनको पता नहीं होता था कि हरे कृष्ण ये क्या है, तो सुन लिया तो वो अज्ञात सुकृति हो गई। किसी भक्त ने आके उनको प्रसाद दिया, थोड़ा भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया, ये नहीं सोचा कि ये प्रसाद है, वो जानते भी नहीं थे कि प्रसाद क्या है और साधारण भोजन क्या है, उनको लगा कि अच्छा गुलाब जामुन है खा लो, उन्होंने खा लिया लेकिन फायदा हो गया। तो ऐसे छोटे 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 सेवा करके, अज्ञात हो या ज्ञात हो, ऐसे हमारी सुकृति की पूंजी बढ़ती है, बढ़ती है धीरे धीरे धीरे, और धीरे जैसे जैसे हम भक्तों से के संपर्क में आते हैं वैसे फिर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हम नाम संकीर्तन करेंगे, कृपया उत्साह से इसमें